सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या और ये प्रसिद्ध श्लोक जिसका 12वां भाग आज हम लेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता जिसमें हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, 11वें मुद्दे पर, जिस प्रकार से हम स्वयं के लिए एक त्यागपूर्ण जीवन जीते हैं, क्या हम उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के लिए जी पाएंगे? और हमने पिछली बार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से ये प्रसंग प्रारंभ किया था, याज्ञिक ब्राह्मणों का और उनकी पत्नियों का उद्धार 8 शिक्षाएं उससे। कृष्ण नेवर डिमांड्स फॉर हिमसेल्फ, नेवर लूज फोकस ऑन द पर्पस ऑफ सर्विस। कृष्ण सेंड्स कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज देयर इन प्रीचिंग। Always be ready for an alternate solution. Be flexible. Never underestimate even the simplest act in Krishna consciousness. 7th, rectification is active repentance. 8th, be useful for Krishna rather than skillful for Krishna. First lesson, Krishna demands but not for himself. Lesson number 2, never lose focus on the purpose of our service. We first define what is the purpose of education, earning, marriage, begetting children, life and spirituality, and that's how we can perform these activities meaningfully. Arjun's one-pointed focus, the story we took, do dafa Bhagavad Gita mein Arjun sharanagati dikhaye, sabse pehle शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम दूसरे अध्याय में और उसके पश्चात 18वें अध्याय में पहले ज्ञान अर्जित करने हेतु और उसके पश्चात उस ज्ञान को अपने जीवन में किस प्रकार से उतारना है। करिष्ये वचनम तव, 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा, ज्ञान, नॉलेज, फिर उसके पश्चात क्या करना है और किस भावना में उसे करना है। तो ये जो 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, डूइंग व्हाट कृष्णा लाइक्स, डूइंग व्हाट इज ऑथराइज्ड फॉर वन सेल्फ, डूइंग इट इन राइट कॉन्शियसनेस। और आज हम प्रारंभ करेंगे ये लेसन नंबर 3। तो लीला यहां तक पहुंची थी कि इन ब्राह्मणों ने भगवान द्वारा भेजे गए ग्वाल सखाओं को रिजेक्ट कर दिया, दुत्कार कर भगा दिया। और ये मांगने क्या गए थे? उस यज्ञ के फल को मांगने गए थे। जो यज्ञ ये अनुष्ठित किए उस यज्ञ के फल को मांगने, और वो भी भेजा किसने? साक्षात भगवान ने भेजा। तो यदि कोई ये प्रश्न उठाए कि क्या ब्राह्मणों का यज्ञ संपन्न करने से पहले यज्ञ के फल को दे देना क्या वो प्रामाणिक था, वॉज इट ऑथराइज्ड, डायरेक्टली भगवान कह रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्रामाणिक बात और क्या हो सकती है। तो देखो भगवान प्रसंग में ये जो घटना है, जब उन्होंने ग्वाल सखाओं को दुत्कार कर भगा दिया, इससे ये दर्शा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अध्यात्म में लगे हुए भी कितना भ्रमित हो सकता है या कितना पथभ्रष्ट हो सकता है। यदि डायरेक्टली भगवान भी आ जाएं, यदि वो सही प्रामाणिक तरीके से फोकस्ड नहीं है, जो लेसन नंबर टू, तो भगवान भी यदि सामने आ जाए साक्षात, तो उसे लगेगा कोई नौटंकी से आया है। और कलयुग में तो उल्टा क्या है, कोई नौटंकी से आ जाए तो उसको भगवान बोल देते हैं। तो अब यहां पर ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए, भगवान ने ग्वाल सखाओं के द्वारा रिमाइंडर्स इन ब्राह्मणों को भेजा। हालांकि भगवान ने रिमाइंडर, हमने यहां पर प्लूरल में किया है उसको, रिमाइंडर्स, क्यों? क्योंकि इससे पहले भगवान की कथा पहुंच चुकी थी, अभी तो साक्षात भगवान पहुंचे हैं, भगवान के आदेश पहुंचे हैं, भगवान स्वयं, भगवान के आदेश, इससे पहले भगवान की कृष्ण कथा पहुंच चुकी थी इनकी पत्नियों के पास, तो अवश्य ही इनकी पत्नियां अपने पति के साथ भगवान कृष्ण के विषय में डिस्कशन किए होंगे। और यदि मान लो डर के मारे उन्होंने नहीं भी किया अपने पतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का डिस्कशन, भगवान श्री कृष्ण जो आए दिन ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे थे, ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने की 6 दिन से जो शुरू हुए पूतना वध, तो अवश्य ही कितना डिस्टेंस है मथुरा वृंदावन 15 किलोमीटर, अवश्य ही ये बात सुनने में उनकी आई होगी। तो भगवान ने पहले से इतने संकेत उनको दे दिए कि यदि आपको कृपा प्राप्त करनी है तो ठीक है, मैं अवतरित हुआ हूं कृपा बांटने के लिए। और कलयुग में भगवान इतने अलग अलग प्रकार से हमें संकेत दे रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं अपने अलग अलग रूपों में, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि हम हमारे जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भगवान द्वारा भेजे गए रिमाइंडर्स को पहचान पाते हैं कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कैन वी डिटेक्ट द रिमाइंडर्स सेंट बाय लॉर्ड श्री कृष्णा। रामायण में सुग्रीव का उदाहरण है। सुग्रीव ने भगवान को एक आश्वासन दिया कि वाली का वध करो और जो सहायता आपको चाहिए वो सहायता मैं उपलब्ध कराकर दूंगा। तो ठीक है, भगवान उस समय उनका फोकस था सीता को फिर से लाना है, और वन में अकेले वो और लक्ष्मण केवल। अब यहां पर जो इनकी वानर सेना, सुग्रीव की वानर सेना, उसके सहायते सहायता से भगवान लंका पर युद्ध छिड़ाना चाहते थे, तो सुग्रीव ने आश्वासन तो दिया, परंतु उसके पश्चात सुग्रीव भूल गया, जो उसे राज्य प्राप्त हो गया, अब जो सुकून से वो राज्य करने लगा, न केवल अपने स्वयं की पत्नी उसको मिल गई, अब वाली की पत्नी भी मिल गई, बाय वन गेट वन फ्री। तो सुग्रीव एक बद्ध जीवात्मा की भूमिका निभा रहा है कि जब हम दुख में होते हैं तो बहुत भगवान को याद करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान अपना दुख दूर कर देते हैं तो हम भगवान को भी दूर कर देते हैं। यह है टिपिकल बद्ध जीवात्मा की मेंटालिटी सुग्रीव दर्शा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने लक्ष्मण को भेजा एज अ रिमाइंडर। तो ये रामायण से उदाहरण है। अब हमारे जीवन में हम कृष्ण के रिमाइंडर्स को विभाजित कर समझने की कोशिश करेंगे दो प्रकार से, इंडिकेटर्स और वार्निंग्स। दो प्रकार से भगवान हमको रिमाइंडर्स भेजते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या है, हमें क्या करना है, और वार्निंग्स कौन से हैं, हमें क्या नहीं करना है। अब शास्त्रों में यदि हम जो हमारे प्रिलिमिनरी शास्त्र के ज्ञान है उसको अगर हम देखें तो ये दो विभाजन है शास्त्र के, क्या करना है और क्या नहीं करना है। योग का प्रारंभ कहां से होता है, यम नियम। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उस विधि की शुरुआत होती है यम और नियम से, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। अब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारे भौतिक जीवन का भी। हमारे भौतिक जीवन में भी हम सुबह जब उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक, हर दिन, हर हफ्ते, महीना, पूरे जीवन भर क्या कर रहे हैं, हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कर विश्लेषण करते हैं, आज मुझे क्या करना है क्या मुझे नहीं करना है, क्या करने से आज का दिन अच्छा जाएगा, क्या नहीं करने से आज का दिन अच्छा जाएगा, क्या करने से आज का दिन बुरा जाएगा, क्या नहीं करने से आज का दिन बुरा जाएगा। ये भी एक अलग कैटेगरी है। हम लिस्ट नहीं बनाते होंगे, कई लोग जो बहुत सिस्टमैटिक होते हैं थिंग्स टू डू लिस्ट बना देते हैं, है ना, कैलेंडर मिलते हैं ना आजकल, थिंग्स टू डू, सेलफोन के अंदर भी आता है, प्लान योर डे, थिंग्स टू डू। एक और कैलेंडर हमारा साथ में होता है, हो सकता है कि वो ऑफिशियली हम नहीं लिखते हो, थिंग्स नॉट टू डू, अलोंग विथ थिंग्स टू डू थिंग्स नॉट टू डू। अब इंडिकेटर्स और वार्निंग्स, इस हेडिंग में थोड़ा और हम अंदर घुसते हैं। हमारा जीवन अगर हम उसको कुछ पॉइंट्स में विभाजित करें तो कौन से मुद्दों पर हमें भगवान द्वारा भेजे गए ये संकेत और ये चेतावनियां, इंडिकेटर्स और वार्निंग्स को पहचानना। अब हो रहे हैं ये चारों ओर हो रहे हैं, इस समय भी हो रहे होंगे, लेकिन होता क्या है, जब तक हमारे सामने हमें बताया नहीं जाता, अच्छा ये इंडिकेटर, अच्छा ये वार्निंग, तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर लें उसके बाद हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हम हमारे जीवन में इन इंडिकेटर्स और वार्निंग्स भगवान द्वारा भेजे गए पहले तो उसको कनेक्ट कर पाए हम कि हाँ ये मेरे सुधार के लिए भगवान या भगवान के प्रतिनिधि या प्रकृति द्वारा भेजे गए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बदलाव। ये जो पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है ये पूरी सृष्टि को भगवान ने इस प्रकार से रचा है कि हर एक क्षण इस सृष्टि के अंदर बदलाव होते जाता है। संसार चक्र, संस्मृति या संसार चक्र, चक्र जो है वो हर समय घूमता रहता है, जैसे कि काल चक्र। काल चक्र हर समय घूमता रहता है। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कीमती से कीमती घड़ी खरीद ली फिर भी समय मेरे बस में ना हो पाया। तो चाहे हम कीमती से कीमती घड़ी खरीद लें या उस कीमती से कीमती घड़ी को बंद कर दें, हमारे घर की सारी घड़ियों को बंद कर दें, इस नासिक की सारी घड़ियों को बंद कर दें, इस पूरी पृथ्वी के सारी घड़ियों को बंद कर दें, परंतु समय को हम बंद नहीं कर पाएंगे, हम खुद बंद हो जाएंगे। समय चलता रहेगा, इसे कहते हैं संसार चक्र। तो चेंजेस, बदलाव, हमें इस संसार चक्र के अंदर जो बदलाव होते हैं उनसे क्या सीखना है, इंडिकेटर्स और वार्निंग्स। सबसे पहले ऑब्जर्विंग अवर मोन मटेरियल बॉडी। अब कितना हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे स्वयं के इस भौतिक शरीर को, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे बचपन की फोटोएं देखते रहते हैं, है ना। आजकल तो सेल्फी का जमाना है, एक घंटे पहले मैं कैसा दिख रहा था, एक घंटे पहले मैं ऐसा दिख रहा था, व्हाट्सएप पर सब लोग देखिए। प्रश्न ये है कि हम जब अपने शरीर के अंदर ये बदलाव इतना देखते हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हमारा ही शरीर उससे गुजर रहे हैं, किसी और का शरीर नहीं है, यही हमारा शरीर जिसको हम हमारा कहते हैं, मेरा नाम दे रखा है इसको, इस शरीर का नाम ये है, ये शरीर यहां पर निवास करता है, ये शरीर इसके ये कार्य है, ये शरीर इस परिवार से जुड़ा हुआ है, कितने सारे, और सब बदलते रहते, ये सारे परिचय बदलते रहते। आपको हम एक मिनट का वीडियो दिखाएंगे इस शरीर के संदर्भ में। कुछ कुछ लाइट्स बंद कर दो पीछे के। क्या दिख रहा है आपको? हमको लग रहा होगा कि मेरी हालत अभी तो ऐसी नहीं हुई है ना। जब भी हम ऐसा चेहरा देखते हैं तुरंत हमारे मन में इंडिकेटर्स और वार्निंग्स में क्या आता है, क्या आना चाहिए, खैर क्या आता है बोला, क्या आना चाहिए, नहीं इंडिकेटर है कि वार्निंग है, नहीं दोनों है, दोनों है इसके अंदर. अभी आप लोग ध्यान से इस चेहरे की ओर देखते रहिए. तभी वार्निंग से क्या हो गया, सब कुछ बदल गया ना. फ्रॉम इंडिकेटर्स टू वार्निंग्स, नाउ समवन माइट बी थिंकिंग काश ऑन कर लाइट्स. अब देखिए रामनवमी आ रही है, रामायण से ये छोटी सी घटना. दशरथ महाराज एक दिन सुबह तैयार हो रहे हैं अपने राजमहल में जाने के लिए. आईने में उन्होंने अपने आप को देखा और उन्होंने देखा उनके दाहिने कान के ऊपर का एक बाल सफेद हो गया है. इंडिकेटर. तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रिमंडल को बुलाया. और कोई भौतिकतावादी होता तो कहता भाई गोदरेज डाय लेकर आओ. उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उन्होंने कहा समय हो चुका है मेरे सेवानिवृत्ति का. Time has come for me to retire. उन्होंने एक सफेद बाल देखा, देखिए, और तुरंत भगवान द्वारा भेजा गया रिमाइंडर उसको वो डिकोड कर पाए, ट्रांसलेट कर पाए. एक व्यक्ति ने यमराज जी से पहले ही कह दिया था कि आप मुझे तुरंत मत उठा लेना, मुझे कुछ इंडिकेटर्स देते रहना, नोटिस भेजते रहना ताकि मैं तैयार होता रहूं. एक दिन अचानक मृत्यु हो गई तो शिकायत करने लगा, मैंने कहा था आप नोटिस भेजते रहना. यमराज जी कहे कितने नोटिस भेजे तुमको मैं, जब तुमको सरदर्द शुरू हुआ वहां से लेके आर्थराइटिस, वहां से लेके कैंसर, वहां से लेके तुम्हारे बाल अब सफेद होने लगे, वहां से लेके बाल झड़ने लगे, सारे झड़ गए, दांत एक एक कर वो नीचे गिरने लगे, सारे दांत नीचे गिर गए, चेहरे के ऊपर झुर्रियां एक के बाद एक, अब दो पैर नहीं, अब तुमको तीसरा पैर चाहिए चलने के लिए, डंडा. तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ये तुम्हारी त्वचा वो सारी गलने लगी, सुनाई कम देने लगा, सुनाई नहीं देने लगा. बिस्तर पर पड़े हुए, वहीं पर तुम्हारा कार्यक्रम सब चलता, और तुम कहते हो कि नोटिस नहीं भेजा। कितने नोटिस भेजे? तो हमारे इस मनुष्य जीवन में जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल हमें हर एक क्षण करना है। ये नहीं कि बस स्कूल कॉलेज में बुद्धि का इस्तेमाल किया मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर पास होने में, उसके बाद बस बुद्धि को ताला लगाकर बंद कर दो आप। और खैर वहां पर जो बुद्धि लगाई उसको बुद्धि नहीं कहते, वो तो केवल नॉलेज गैदरिंग हो गया। एक्चुअल इंटेलिजेंस इज टू नो द इंडिकेटर्स एंड द वार्निंग्स ऑफ आवर लाइफ, टू डिटेक्ट देम। इसलिए भगवान बुद्ध के जीवन में जब भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ये सन्यासी बनने वाला है, ये गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा, ये सन्यासी बन जाएगा। हालांकि हाँ वो गृहस्थी थे, लेकिन ये जल्द ही कम उम्र में सन्यासी बनने वाला है, तो उनके पिताजी ने सोच लिया कि व्यक्ति वैराग्य को अपना लेता है कब? जब वो इस संसार के वार्निंग्स और इंडिकेटर्स को पहचान लेता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो दूर रखा भगवान बुद्ध को उनसे। एक दिन अकस्मात उन्होंने अपने राज्य के बाहर जाते हुए सब देख लिया। एक दफा उन्होंने ये सारी चीजें देखी, किसी बीमार व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को और शव यात्रा, एक दफा केवल। तुरंत डिकोड कर पाए भगवान बुद्ध कि ये संसार नश्वर है, और हम आए दिन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कई बार यदि देखने सुनने अनुभव करने के बाद भी हमें हमारी अकल ठिकाने नहीं आती तो प्रकृति हमें नियर डेथ एक्सपीरियंस दे देती। जैसे शेर के मुंह में अंदर भेजकर फिर से खींच ले, जबड़ा दिखा देते, मृत्यु का जबड़ा दिखा देते। वहां से भी बाहर आने के बाद फिर हमारी आशाएं बंधी रहती, तदापि न मुंचति आशा पिंडम। तो महाराज दशरथ भगवान बुद्ध हमें सिखा रहे हैं कि ये जो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन बदलाव, ये सब कुछ देखते हुए क्या हमारी बुद्धि ठिकाने आ रही है? आर वी अंडरस्टैंडिंग द वार्निंग्स एंड रिमाइंडर्स? राधा गोविंद महाराज, उनका एक प्रवचन में बहुत साल पहले सुन रहा था, तो वो शरीर की तुलना एक मकान से कर रहे थे। तो मकान, अभी जैसे कई बार बंबई में ऐसे पुराने मकान हैं, न्यूज में आता है कि जो लोड बेयरिंग पिलर है वो लोड बेयर नहीं कर सका और मकान गिर गया। पुराने मकान वो अंग्रेजों के जमाने के गिर गए। तो राधा गोविंद महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि हमारा शरीर भी एक मकान के समान है, और ये जो हमारे दो पैर हैं ये लोड बेयरिंग पिलर। तो कुछ साल बाद, 50-60 साल बाद, लोड बेयरिंग पिलर्स क्या होते हैं? डगबगाने लगते हैं। तो वो कह रहे थे जब मकान इस प्रकार से डगमगाने लगे तो समझ लेना चाहिए मकान खाली करने का समय आ गया। अब सोचो कितना कितना खतरनाक है, हिल रहा है मकान लेकिन फिर भी उसको छोड़ नहीं रहे, वो मकान गिर जाएगा तो लेके मरेगा। बहुत लोग ऐसे मर जाते हैं। तो उन्होंने ये अच्छा उदाहरण दिया कि ये जो जोड़ों का दर्द, ये वो घुटनों का दर्द, ये सब अलग अलग दर्द जब शुरू होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि मकान खाली करने का समय आ गया, तैयारी कर लो, अटैची छोड़ दो। नहीं तो पैक करना शुरू कर, इसलिए उसको अटैची कहते हैं, अटैचमेंट बहुत रहता है अटैची से। इसके पश्चात ऑब्जर्विंग द एनवायरमेंट अलोंग अराउंड अस। अब देखो दिसंबर के महीने में बरसात हो रही है, जनवरी के महीने में बरसात हो रही है, फरवरी के महीने में बरसात, मार्च के महीने में बरसात, कोई पूछे कौन सा मौसम चल रहा है भाई, ये कलयुग का एक लक्षण है। भविष्य पुराण में अलग अलग लक्षण बताए हैं कि कलयुग में मौसम जो है कोई ठिकाना नहीं रहेगा मौसम का, हल जो है उसमें बीज बड़े बड़े होते जाएंगे। जैसे आम, हमको लगता है कि आम एक ऐसा फल है महाराष्ट्र का, हापुस, रत्नागिरी, अल्फांसो, कहां कहां एक्सपोर्ट होता है, लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार ये कलयुगी फल, इसके अंदर वो अंदर का जो बीज है वो बड़ा होते जा रहा है, माल कम है बीज बड़ा है, गुठली बड़ी होती जा रही। तो भविष्य पुराण से दीज आर द सिम्टम्स, मतलब वो एक इंडिकेटर है, गुठली बड़ा होना और माल कम होना, रस कम होना, इसका मतलब क्या है, जीवन भी उसी प्रकार से हो रहा है, जो अननेसेसरी चीजें गुठली जो फेंकने जाने वाली है वो बड़ी होती जा रही है, और जो असली तत्व है हमारे जीवन का कुछ नहीं होता। जैसे चैतन्य महाप्रभु, एक मायापुर में एक जगह है आम घाट, चैतन्य महाप्रभु की एक लीला वहां पर हुई, घंटों घंटों कीर्तन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ऐसा नहीं चैतन्य महाप्रभु के साथ किचन टीम जाती थी कि आधे लोग कीर्तन कर रहे हैं, आधे लोग किचन में कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कीर्तन खत्म होगा तो इनके लिए फीस फीस तैयार होने चाहिए, वहां पर कोई किचन टीम वगैरह नहीं होती, सब चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 8 घंटे 15 घंटे 25 घंटे कीर्तन चल रहा है नॉन स्टॉप, और फिर कुछ डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उन्होंने महाप्रभु को कहा, महाप्रभु हमारे कुछ भक्त थक गए हैं, लग रहा है कि उनको भूख लगी हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वहीं पर एक आम का पौधा पिरोते हैं और सबके आंखों के सामने आम के वृक्ष में परिवर्तित होता है वो पौधा, और उसमें ऐसे आम लगते हैं न तो छिलका है न गुठली। हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा कैसा आम होगा, पकड़ेंगे कैसे उसको, ये कलयुग की बुद्धि, हम लोग दिमाग लगाते हैं कि जब तक उसको छील के रगड़ रगड़ के नहीं खाया हमको लगता है नहीं कि। तो ये आध्यात्मिक संसार, चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक संसार को अवतरित कराया उस एक आम के रूप में, कि आध्यात्मिक संसार है क्या, न तो छिलका न गुटली, केवल आम। और कलयुग में क्या है, दूध कम पानी ज्यादा, चाय कम पानी ज्यादा, वो मुहावरा है ना ऐसा, वो है। तो अब अगर हम ये इतने वैज्ञानिक लगे हुए हैं, ओजोन लेयर कम हो रहे होते जा रहा है, गर्मी और वो आइस कैप्स वो पिघलती जा रही है, उसके वजह से इतने तूफान अमेरिका में जो इतने तूफान आते रहते हैं हर साल, उसका रीजंस वो ढूंढ के बता रहे हैं, वो इंडिकेटर्स देख रहे हैं, वार्निंग्स भी देख रहे हैं। हम लोग हमारे चारों ओर जब क्लाइमेटिक चेंजेस देखते हैं या एनवायरमेंट में चेंजेस देखते हैं तो हम लोग इतना ज्यादा गौर नहीं करते कि ठीक है बारिश होता थोड़ी ठंडा हो गया, अच्छा हुआ गर्मी थोड़ी लेट शुरू हो रही है। किसान वो जब देखते हैं तो उनका तो सब कुछ लूट गया, पूरी मेहनत उनकी खराब हो गई। हम किसान नहीं है तो हमको कुछ ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे ऊपर भी आगे चलकर वो असर होगा, क्योंकि यदि उनकी खेती खराब हो गई तो फिर महंगाई बढ़ेगी, है ना। महंगाई बढ़ेगी तब समझ में आएगा कि हाँ महंगाई क्यों बढ़ी, क्योंकि खेती खराब हो गई। खेती क्यों खराब हो गई? क्योंकि पर्यावरण खराब हुआ। पर्यावरण खराब क्यों हुआ? क्योंकि हमने पर्यावरण खराब किया। एक और आपको छोटा सा वीडियो दिखाएंगे इसके संदर्भ में। इस वीडियो का शीर्षक है When God Whispers। क्या कहते हैं विस्पर? भगवान हमारे कानों में जब संकेत देते हैं तो क्या भगवान हमारे कानों में जो कहते हैं क्या वो सुनाई दे रहा है? बहुत सुंदर हार्ट टचिंग वीडियो है। पूछा गया, व्हाट आर द सेवन वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, सात अजूबे इस पूरे पृथ्वी पर कौन कौन से हैं? सब हम इतनी बार सुने हैं। एक छोटी सी लड़की ने लिखा, कुछ अलग ही लिखा उसने, और जब उसका उत्तर देखा एग्जामिनर ने तो एग्जामिनर को लगा कि ये हमारे सिलेबस के अनुसार उत्तर ठीक नहीं है। लेकिन जब वो पढ़ा तो सबको अंदर ये लगा कि हाँ ये वास्तविक रूप में अजूबे हैं, दीज आर द रियल वंडर्स। और उसने लिखा था हम अपनी आंखों से रोज देख पाते हैं, इससे बड़ा अजूबा क्या हो सकता है। किसको? उसी ताजमहल को। हम हमारी जिह्वा से रोज उच्चारण कर पाते हैं, हमें हमारी मातृभाषा याद होती है रोज। कल्पना करो कि रोज आपको याद करनी पड़े आपकी मदर टंग, रोज आप भूल जाओ, बोलने की शक्ति रोज आपकी चली जाए, चलने की शक्ति, समझने की, सुनने की, खाने की, चखने की, देखने की, महसूस करने की, ये सारा लिस्ट था उसका। ये सारे हैं हमारे जीवन के, हमारे ही साथ जीने वाले, चलने वाले, रहने वाले, अनुभव हम करने वाले अजूबे। दीज आर द वंडर्स ऑफ आवर ओन प्राइवेट लाइफ। इसलिए भगवान जब हमें इतनी तीक्ष्ण बुद्धि दिए हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस तीक्ष्ण बुद्धि के पीछे भगवान का प्रयोजन क्या है। क्योंकि यदि केवल आहार निद्रा भय मैथुनी करना होता मुझे तो भगवान इतनी प्रगत बुद्धि क्यों देते मुझे। इसलिए प्रकृति का नियम यही है कि जब हम इस प्रगत बुद्धि से केवल आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं तो फिर प्रकृति क्या करती है, ठीक है भाई पल्ले नहीं पड़ी तुम्हारी बात, मनुष्य जीवन में तुम्हें ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि तुम्हें ये बुद्धि क्यों दी गई है। इसलिए जिसके तुम लायक हो फिर वो बनो। जानवर की अन्य जो बाकी 80 लाख योनियां हैं वो सब प्राप्त हो जाती। हमें हमारी जो इंद्रियां हैं, शास्त्र हमारे बताते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भी इंद्रिय भोग के लिए सक्षम नहीं है। मैन इवन इफ वॉन्ट्स टू ग्रेटिफाई हिज सेंसेस ही इज इनएडिक्वेट। ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं इनके अंदर बहुत लिमिटेशंस हैं। कितना हम सुन पाएंगे, कितना हम खा पाएंगे, कितना देख पाएंगे, कितना कुछ कर पाएंगे इन इंद्रियों से, सीमित हैं ये इंद्रियां। ये सीमित भगवान ने इसलिए बनाई हैं ताकि हमारे जहन में ये बात आ जाए कि मेरे लिए इंद्रिय भोग भी सीमित है जैसे कि मेरी इंद्रियां हैं। लेकिन हम लोग लगे पड़े हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अपने मेरे ख्याल से मैचलेस गिफ्ट बुक में कि रास्ते पर आप एक अनाज की बोरी खोलकर फेंक दो, चिड़िया आएंगी, उनको जितना अनाज चाहिए वो चुगकर उड़ जाएंगे। मनुष्य देखेगा वो क्या करेगा, वो घर से दूसरी बोरी लेकर आएगा, खाली बोरी लेकर आएगा, इसको भरेगा। वो बोरी पे एड्रेस कहां पर है वो पहले देखेगा, जैसे ये बोरी यहां से आई, ये मिल से आई है, शायद ये मिल में और भी ऐसे फ्री में बांटते होंगे वो लोग, शायद उसका एड्रेस नोट डाउन करेगा, वहां पर जाके पहुंच जाएगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज द ग्रीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और कितनी बार हम ये कहते हैं कि चाहे कोई अरबपति हो, करोड़पति हो, लखपति हो, कितनी चपाती खा पाएगा वो, उसके बैंक बैलेंस के अनुसार उसका पेट तो बड़ा नहीं होता जाएगा, कई बार तो उल्टा होता है। जैसे कहते हैं ना एक गरीब आदमी पेट भरने के लिए वो मेहनत कर रहा है, दौड़ धूप लगा रहा है, पेट भरने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, और एक अमीर आदमी उस पेट को कम करने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। बहुत भर लिया उसने, अब उस पेट को कम करने के लिए वो लगा हुआ है। ये है हिसाब भौतिकतावादी मनुष्य का। तो इसलिए हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि हम कलयुग में प्रगति नहीं कर रहे हैं, हम कलयुग में कलयुग की जो अंधेरी गुफा है इसके अंदर और घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। आसपास आप आजकल पर्यावरण देखो अपना, तो बाहर का पर्यावरण वो किसके वजह से है, अंदर के पर्यावरण के वजह से। इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे द एनवायरमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज द एनवायरमेंट ऑफ द हार्ट इज पोल्यूटेड। यू क्लेंस एंड प्यूरिफाई योर हार्ट, योर सराउंडिंग्स विल बी क्लीन। तो भगवान इसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई मैंने तो जैसे मुझे कहां पर तो ये प्रश्न पूछा जा रहा था, शायद हमारे वो भागवत स्टडी सर्कल में, याद नहीं आ रहा। तो ये प्रश्न पूछा था कि भगवान ने ये गलत चीजें बनाई क्यों संसार में। अगर भगवान चाहते हैं कि हम सब भगवत धाम जाएं, तो भगवान ने गलत ये इतना सब दुख और ये सब तकलीफें, ये बीमारियां, ये तो भगवान क्यों बनाए। तो मैंने उदाहरण दिया, भगवान ने अंगूर बनाया, हमने क्या किया उस अंगूर का, भगवान से अगर पूछो तो भगवान इसी प्रकार का उदाहरण देकर उत्तर देंगे। भगवान कहे मैंने तो भाई तुमको एकदम ताजा अंगूर दिया था खाने के लिए, तुमने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, भगवान इसको सड़ाते हैं पहले। तो जो ताजा अंगूर उन्होंने दिया उसको हमने सड़ाया, सड़ाकर दारू बनाई, और दारू बनाकर फिर उसको अंगूर से 10 गुना ज्यादा दामों में बोला हमने बनाए। और फिर जब उसके वजह से तकलीफ हुई तो फिर भगवान के मंदिर में जाकर बोलते हैं भगवान काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। फिर भगवान भी उत्तर में कहते हैं क्या तेरे दिमाग में समाई, मैंने तेरे को अंगूर दिया तूने दारू बनाई, क्या तेरे दिमाग में समाई। अब देखो आजकल आप देखो प्रगति का डेफिनेशन किस प्रकार से दिया जाता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर कोई अगर कहे कि इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है तो इकोनॉमी किसके बलबूते पर बढ़ती है, एक नमूना आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहुत साल पहले, ये गन्ने का मौसम चल रहा है, बहुत साल पहले महाराष्ट्र में सरप्लस गन्ने का प्रोडक्शन और शुगर का प्रोडक्शन, उसके वजह से सरप्लस शुगर के प्रोडक्शन के वजह से जो मोलासेस सरप्लस बना उस शुगर फैक्ट्री में, पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं मोलासेस, तो वो मोलासेस का क्या करें, सरप्लस है चलो इसकी दारू बनाते हैं। तो उसकी दारू बनाई गई, अब दारू जब बन गई तो इसको कम दामों में बेचो क्योंकि अभी कस्टमर चाहिए। तो उसका मार्केटिंग शुरू हुआ, एक और एजेंसी चालू हुई, अब दारू के मार्केटिंग की एक एजेंसी चालू हुई, उनको रोजगार मिलने लगा। कहां से शुरू हुआ ये सरप्लस मोलासेस। तो फिर दारू की मार्केटिंग, कस्टमर बढ़ते गए, जब कस्टमर बढ़ते गए तो उन्होंने सोचा कि पहले अनप्लान्ड हुआ था, ये पहले साल अनप्लान्ड हुआ था, अब प्लान करके सरप्लस करते हैं इसको क्योंकि कस्टमर ज्यादा हो रहे हैं दारू के। तो प्लान करके सरप्लस उत्पादन किया गया उसका, फिर बाद में उसकी दारू बनी और फिर बाद में कस्टमर्स उसके और बनते गए और कुछ सालों बाद हुआ ऐसा कि महाराष्ट्र के ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर ये कस्टमर दारू के बनते गए पीते गए, उसके वजह से उनका लिवर बिगड़ते गया, तो वहां के हॉस्पिटल्स में बेड्स कम पड़ने लगे क्योंकि पेशेंट्स बढ़ गए, तो बेड्स कम पड़ने लगे, तो जो बेड का धंधा करते थे उनका रोजगार उनकी आमदनी बढ़ गई क्योंकि यहां पर बेड हॉस्पिटल के बेड हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, यहां पे बेड उनको और जरूरत है, चलो हम हमारे दाम बढ़ाकर बेड भेजेंगे क्योंकि इनको जरूरत है बेड की। अभी बेड और एक्स्ट्रा लगाने लगे, अस्पताल में जगह ही नहीं बेड लगाने की, इतने पेशेंट्स बढ़ गए क्योंकि वहां से चालू है साइकिल, कहां से चालू है, सरप्लस प्रोडक्शन चालू है, वो पूरा कन्वेयर बेल्ट में आ रहा है एक एक करके। फिर हॉस्पिटल बढ़ाओ, हाँ तो हॉस्पिटल बढ़े, हॉस्पिटल बढ़े तो पूरा हॉस्पिटल के अंदर कितना रोजगार सबको मिला, पूरा हॉस्पिटल चलाने के लिए कितना क्रू चाहिए, और डॉक्टर्स चाहिए, अभी हॉस्पिटल बढ़ गए तो डॉक्टर्स चाहिए, अब डॉक्टर कहां से पैदा करें, तो मेडिकल कॉलेजेस और खोलो, तो मेडिकल कॉलेजेस और खोले, वो मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो पूरा रोजगार सिस्टम लगा, एजेंसीज लगे, उसमें कितना, तो यहां पर फिर फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि महाराष्ट्र का इकोनॉमी देखो कितना बढ़ गया है, कितना रोजगार सबको मिला, और ये जो इकोनॉमी बढ़ा रोजगार सबको मिला इसके पीछे कारण कौन है, पियक्कड़। एक बार एक शराबी, बोतलें पड़ी हुई थी उसके बहुत सारी, एक एक बोतल फेंकते जा रहा है बाहर, रोए जा रहा है फेंकते जा रहा है, बोतल फेंकते हुए कहता है दफा हो मेरे घर से, तूने मेरी नौकरी छुड़वा दी, फेंक दी, दूसरी बोतल उठा, दफा हो मेरे घर से, तूने मेरी बीवी छुड़वा दी, तीसरी बोतल उठा, दफा हो मेरे घर से, मेरा मकान लुटवा दिया तूने, चौथी बोतल उसकी ओर देखता है, अरे पगली तू साइड में हो जा, तू बेकसूर है क्योंकि क्योंकि वो भरी हुई थी। मुझे याद है बहुत साल पहले हमारी वो 31st की न्यू ईयर्स ईव पार्टी, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि सबको रेजोल्यूशंस इस पार्टी में सुनाने, अपने अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन सुनाने हैं सब एयरफोर्स ऑफिसर्स को। तो एक आया हमारा वो स्टेज पे आया अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सुनाने के लिए, कहता है शराब बुरी चीज है, आओ हम सब मिलकर खत्म करें। शराब बुरी चीज है, आओ हम सब मिलकर खत्म करें, शराब बुरी चीज है, आओ हम सब मिलकर खत्म करें, एक बोतल तुम करो एक बोतल हम करें। तो हम उस प्रकार के इंडिकेटर्स और वार्निंग्स के बारे में नहीं कह रहे, इसलिए observing environment around us. Third is observing the social structure. अब देखिए आजकल हम social structures को अगर देखें एक एक decade में social structures के अंदर जो changes आ रहे हैं, ये ध्यान में रखना ऊपर का जो point है changes, changes in our material bodies, changes in the environment, changes in the social structure gives us warnings and indicators. भगवान का ये सब रिमाइंडर है. और ये भगवान ने कलयुग के विषय में पहले ही कह चुका है. कलयुग शुरू होने से पहले प्राण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रित कलेर दोष निधे राजन यस्ति एक महान गुण. ये दोषों का ये जो समुद्र है, तो अब हो क्या रहा है कि हम लोग इस दोषों के समुद्र में कई बार हम समुद्र कभी कभी शांत दिखता है, कभी कभी समुद्र के अंदर जैसे कहते हैं ना हाई टाइड्स और लो टाइड्स, तो जब हाई टाइड समुद्र के अंदर बहुत उथल पुथल ऐसी ऊंची ऊंची लहरें, तो हमको लगता है कि बाप रे ये समुद्र बहुत ही भयावह है. और कई बार जब समुद्र के अंदर टाइड्स इतनी हाई नहीं होती तो हम गोते लगाते हुए हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है वो समुद्र ही, कोई ठिकाना नहीं है कब उसके अंदर वो हाई टाइड्स शुरू हो जाए. तो वैसे ही कलयुग के अंदर हम सोचते हैं कि नासिक के अंदर कलयुग का प्रभाव अगर मुझे लग रहा है तो मैं थोड़ा ऐसी जगह पर चला जाता हूं. मैं कश्मीर तो नहीं बोल सकते आजकल, क्या उधर ज्यादा ही प्रॉब्लम है, कोई ऐसे हिल स्टेशन पर चला जाता हूं जहां पर इस प्रकार की कोई कलयुग का प्रकोप ना हो. तो समुद्र के दूसरे कोने में जाने का प्रयास कर रहे हैं. हो क्या रहा है कि हम समुद्र में ही घूम रहे हैं, कभी ये कोने में चले गए समुद्र के, वो कोने में, कौन से समुद्र के, ये दोषों के समुद्र, कोई चाहे अमेरिका चला जाए, कोई चाहे अंटार्कटिका चला जाए, चाहे चंद्रमा पर पहुंच जाए, मंगल, जो कहते हैं ना कि हम मंगल पर पहुंचने पर लगे हुए हैं, परंतु हमारे जीवन को कितना मंगल बनाया, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है. तो प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद दे आर सेइंग दैट वी हैव रीच्ड द मून एंड दे आर टेकिंग बुकिंग्स फॉर पीपल हु वॉन्ट्स टू सेटल ऑन द मून, नॉट जस्ट फॉर अ हनीमून बट सेटल ऑन द मून. प्रभुपाद कंसिस्टेंट थे. प्रभुपाद सेड लेट देम गो ऑन द मून, वी विल गो देयर एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट अवर बुक्स. अवर बिजनेस इज द सेम, टू गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस. We are least bothered whether they are on the moon or whether they are doomed. We have to give them Krishna consciousness. So social structures, जब हम देखते हैं आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे, जैसे मैं हमारे हाल ही के प्रोग्राम में बता रहा था भगवद गीता कॉन्टेस्ट, एक बच्चा अपनी दादी को, 80 वर्षीय दादी को बर्थडे गिफ्ट क्या देता है, फुटबॉल. दादी पूछती है कि ये क्या है फुटबॉल, मैं क्या, ये क्या गिफ्ट दिया मुझे, मैं 80 वर्ष की हूं, फुटबॉल. तो बच्चा कहता है पिछले साल मेरे बर्थडे पर आपने भी तो मुझे भगवद गीता दी थी. आजकल ये सारे चेंजेस की जो नई पीढ़ी है, कितना सब कुछ नई पीढ़ी के बारे में बोला जाता है, और फिर बच्चे अपने माँ बाप को क्या कहते हैं, तो आप अपनी जवानी में कौन से हरिश्चंद्र थे, तो माता पिता चाहते हैं कि काश हमारा बेटा राम की तरह होता. बेटों से पूछो वो कहते हैं काश हमारे पिता दशरथ की तरह होते. तो इसलिए जब हम ये सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर आजकल प्रायोरिटी किसको दी जा रही है उसको अगर हम देखें तो इंडिकेटर्स और वार्निंग्स मिल जाने चाहिए कि हमें कहां पर बदलाव लाना है। बदलाव तो हो रहा है, हमें कहां पर बदलाव लाना है। इसलिए वो कहते हैं ना कि जब समझ थी तो समय निकल गया और जब समय है तो अब समझ नहीं। पहले मैं होशियार बनने चला था इस पूरे संसार को बदलने के लिए, आज मैं समझदार बन गया हूं, अपने आप को बदल रहा हूं। इसलिए जब हम चारों ओर इस बदलाव को देख रहे हैं तो हमें उससे वार्निंग और इंडिकेटर्स लेने ले चाहिए। इसलिए मनुष्य जो है वो कौन है? दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब ये नहीं कि दूरदर्शन देखता रहता है। ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स ऑफ टाइम फैक्टर। इसलिए प्रभुपाद जाते समय जब वो अपनी वृद्ध अवस्था में बीमार हुए तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, डोंट थिंक दिस विल नॉट हैपन टू यू। ये मत समझना कि ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि इफेक्ट्स ऑफ टाइम फैक्टर के ऊपर। खैर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर का जो मैसेज है, अगर आपको समझ में ना आए तो इसके अंदर का जो मैसेज है, एक संक्षिप्त रूप में एक लाइन में मैं कह दूं कि कुछ सैनिक हैं, वो एक फोटो बूथ को स्पॉट करते हैं और वो एक बहुत ही अजीबो गरीब फोटो बूथ है, फोटो स्टूडियो, जहां पर आप बैठते ही आपकी फोटो खींची जाती है और तुरंत फोटो दिखाई जाती है। और सब ये जो तीन सैनिक अपनी अपनी फोटो देखते हैं, आखिरी जो सैनिक अपनी फोटो देखता है क्या देखता है? आप देखिए,
this is supposed to be the rendezvous point.
Maybe you're reading it wrong. Hey. What's that?
Looks like a photo booth.
A what?
A photo booth.
Hey, wouldn't do that if I were you.
It's nothing. The camera went off.
Let's get out of here. Wait.
It's weird.
What?
It's Rachel. And my girls.
He's having a lend.
Yeah, well, look for yourself.
Let's get out of here. Let's get going.
You should try. Come on, what if the same thing happens for you?
And leave him alone. He's scared.
Did it work?
Yeah. It's Meredith.
I'm going in again.
I'll go. Might see Debbie and the boys. You two keep a lookout.
We may have company.
Where?
I think there's two of them.
That's weird.
Would you forget the photo? We got company here.
It's Debbie. And the boys. But...
आशा करते हैं समझ में आया आपको। नहीं, पहला सैनिक जब उसने अपनी फोटो देखी तो उस फोटो में उसका पूरा परिवार उसको दिखा, मतलब वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। दूसरे सैनिक ने अपनी फोटो देखी तो पहले फोटो में वो, उसकी पत्नी, दूसरे फोटो में उसकी पत्नी आधी, तीसरे फोटो में खाली वो अकेला, मतलब पत्नी खत्म हो गई। तीसरे सैनिक ने अपनी फोटो में क्या देखा? बीवी, बच्चे वो नहीं है फोटो में, उसका समय आ चुका था। तो इसका मैसेज ये है कि काल का जो कैमरा है वो सही फोटो खिंचा के देता है हमको. हम लोग हमारी फोटो सेल्फी खींच खींच के या फिर फ्रेम कर करके उसको देखते होंगे, परंतु समय का जो कैमरा है वो एक एक कर उस फैमिली फोटो में से या ग्रुप फोटो में से एक एक को अलग करता रहता है. तो ये तीनों सैनिकों का एक्सपीरियंस वो फोटो बूथ का, विजडम ऑफ द फोटो बूथ. दैट फोटो बूथ इज द कैमरा विच इज ऑफ लाइफ. टाइम फैक्टर, क्लिकिंग फोटोज एंड शोइंग अस कि कौन 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 कम होते जाएगा. इसलिए होता क्या है, जैसे वो एक एनेक्डोट है, एक व्यक्ति के पर्स में फोटो बदलती रहती है ना. पहले उसकी खुद की फोटो, जब वो जवान होता है तो पर्स में खुद की फोटो रखता है, फिर जब बड़ा होता है तो अपनी बीवी की फोटो रखता है शादी जब हो जाती है, फिर जब और बड़ा होता है तो बच्चों की फोटो आ जाती है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो उनके बच्चों की फोटो आ जाती है, और जब इतना बूढ़ा हो जाता है जब कोई उसका साथ नहीं देता तब फिर फाइनली राधा मदन गोपाल की फोटो रखता है. तो ये है, ये समय का प्रभाव हमारे चारों ओर. इसलिए वो वीडियो का मैसेज क्या था, अंडरस्टैंड द इंडिकेशंस. कौन से मुद्दे पर है मैम? इंडिकेटर्स एंड वार्निंग्स, कृष्णास रिमाइंडर्स, परफेक्ट टाइमिंग, नलकुवर, मणिग्रीव. अब देखो नलकुवर और मणिग्रीव वो कैलाश में गंगा में, मंदाकिनी गंगा में वो नग्न स्नान कर रहे हैं स्त्रियों के साथ, उसी टाइम नारद मुनि पहुंचे वहां. जिस समय, ऐसा नहीं कि वो प्रवेश करने से पहले नारद मुनि पहुंचे या वो लोग बाहर निकलने के बाद अपने कपड़े वपड़े पहन लिए थे तब नारद मुनि पहुंचे, नहीं, नारद मुनि के पहुंचने का टाइमिंग देखो. नलकुवर मणिगिरी वो भी थोड़े क्रोध में आ गई, ये टाइम पे आना था. तो वो परफेक्ट टाइमिंग इसलिए था कि भगवान का रिमाइंडर भगवान ने नारद मुनि के द्वारा भिजवाया. इसलिए यहां पर जो जो उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो उदाहरण सुने होंगे हमने, लेकिन किस संदर्भ में सुनना है अभी. कृष्णा रिमाइंडर इज ऑल्सो मैच्ड विथ परफेक्ट टाइमिंग. टाइमिंग के साथ भगवान रिमाइंडर भेजते हमारे जीवन में, वो समझना है. जैसे भगवान ने ग्वाल बाल को सही टाइम पर भेजा. कौन से टाइम पर भेजा? जब वो अब यज्ञ के जो अंतिम आहुति यज्ञ में अर्पित करने वाले, उस समय भगवान ने ग्वाल सखाओं को भेजा कि जाओ अब जो एक्चुअल ऑफरिंग जो मेरे लिए वो लोग करने वाले हैं मैं स्वयं मांग रहा हूं, जाके उनको कहो. दे डिडंट गेट इट. दूसरा उदाहरण ध्रुव महाराज का. परफेक्ट टाइमिंग था, ध्रुव महाराज 5 साल के अपने पिता की गोद में, उसी समय सुरुचि को आना, सुरुचि को वो शब्द कहना. मान लो सुरुचि ध्रुव महाराज के जाने के बाद कह देती अपने पति से, फिर से कभी मत बिठाना उसको. कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन सुरुचि का कहना, वो सारा माहौल जो क्रिएट हुआ ध्रुव महाराज के लिए परफेक्ट टाइमिंग था कि आगे चल के भगवान की अनन्य भक्ति उनको प्राप्त हुई. हंस, इन सब में नारद मुनि का पहुंचना बहुत टाइमली है. इसमें भी नारद मुनि का पहुंचना, कंस इत्मीनान से बैठा था कि ठीक है 8वां पुत्र होगा. नारद मुनि कहते हैं बेवकूफ, कोई भी पुत्र 8वां हो सकता, ऐसे कैसे, ये कौन सा गणित है. तो नारद मुनि ने कमल का पुष्प दिया, 8 पंखुड़ियां उसके अंदर, पहली कौन सी ये बताओ. वो मूर्ख गिनने लगा, 1 2 पता नहीं कौन सी, वैसे ही कौन सा होगा 8वां पुत्र. अच्छा ऐसा है? तुरंत उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कंस ने। तो नारद मुनि ये देख रहे थे कि अगर कंस इत्मीनान से बैठा है तो भगवान का अवतार डिले हो रहा है, टाइम मैच नहीं हो रहा है, मुझे भगवान की लीलाएं जल्दी जल्दी देखनी है, तो इसके लिए कंस को इंस्टिगेट करो। तो नारद मुनि का वहां पहुंचना बहुत टाइमली था। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु एक बार हिरण्यकशिपु के महल में भी नारद मुनि पहुंचे और राधा रमण नारायण नारायण इनका जप करते हुए अपनी वीणा पर, तो हिरण्यकशिपु ने कह दिया ये तुम कीर्तन बंद करो। नारद मुनि कहता उन्होंने कहा कि कतई नहीं होगा, ये तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हिरण्यकशिपु के पास एक तलवार थी चंद्रहास, तलवार निकाली फेंकी और वो तलवार ऐसी थी कि वो अगले व्यक्ति को काट कर अपने आप को धोकर फिर से मयान में आ जाती, ऐसी तलवार थी चंद्रहास। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है फेंक के देखो, कुछ नहीं हुआ, तलवार एज इट इज बिना कुछ हानि पहुंचाए वापस लौट आई। तो हिरण्यकशिपु के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि ये ऐसा शरीर कैसे प्राप्त किया नारद मुनि ने। तब नारद मुनि ने कहा ये जो मैं नाम जप करता हूं ना इसके वजह से ये शरीर प्राप्त। हिरण्यकशिपु ने कहा वो तो मैं कभी नहीं करता, चैंटिंग तो मैं कभी नहीं करूंगा। इसलिए कई बार इस्कॉन में भी लोग आते हैं, चैंटिंग तो मैं कभी नहीं करूंगा लेकिन तुम लोग इतने खुश कैसे लगते हो उसका नुस्खा बता दो। जैसे हमारे देवामृत महाराज है तो उनकी मदर बहुत अगेंस्ट थी जब देवामृत महाराज कौन ज्वाइन किया एज अ ब्रह्मचारी बन गए, तो बहुत अगेंस्ट थी। तो उन्होंने ठीक है पैसे दिए, उन्होंने अपने बेटे को पता लगा कि यहाँ पे पैसे ऐसे तो इनको कुछ देते हैं नहीं, उन्होंने अपने ओर से पैसे दिए उनको। और जब उनको पता लगा कि ये कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं सारे पैसे, तो फिर उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। फिर देवामृत महाराज एक बार उनसे मिले और ऐसे ही माँ का भाव उनका आ गया, उन्होंने वो पैसे दिए वापस से देवामृत महाराज को और कहा कि ये कृष्ण को मत देना तुम्हारे तुम्हारे लिए। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि मैंने जो पैसे दिए थे क्या कृष्ण को तो नहीं दिए? देवामृत महाराज के नहीं 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 इस बार मैंने गौरांग को दे दिए, दिस टाइम आई गेव टू गौरांग महाप्रभु। तो उनकी माँ की हाँ बट डोंट गिव टू दैट कृष्णा ओके। तो कई बार भगवान और भगवान के प्रतिनिधि इस प्रकार से सेवा में लगाते हैं। तो नारद मुनि ने भी हिरण्यकशिपु को कहा ठीक है तुम तप करो, और उनको पता था कि ये तप करने जाएगा तो मैं प्रहलाद महाराज को पीछे से प्रीचिंग कर सक पाऊंगा, तो ये भी उनका बहुत टाइमली था। अब माया देवी का भी परफेक्ट टाइमिंग होता है, अजामिल का देखो। अब हर सुबह वो जाता था जंगल में जो भी वो पूजा की सामग्री लेने के लिए, उस दिन जिस समय वो गुजर रहा था उसी समय उसके सामने उसने वो वैश्या और वो शूद्र को देखा संभोग करते हुए। तो कई बार भौतिकतावादी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि शायद भगवान ने परफेक्ट टाइमिंग के साथ मेरे को इंद्रिय भोग भेजा, लेकिन ये माया देवी का टाइमिंग होता है। अभी सोचो कि अगर अजामिल उस समय लेट हो जाता जंगल में और ये दृश्य उसको दिखता ही नहीं, या जल्दी चला जाता या आता ही नहीं, छोड़ो आज घर से ही काम कर लेते हैं, काम चला लेते हैं घर पे जो भी कुछ है, लेकिन उस दिन उस समय उस क्षण उसके आंखों के सामने वो दृश्य उसका पूरा जीवन उसकी वजह से परिवर्तित हो गया। तो माया का टाइमिंग भी परफेक्ट होता है। सौबरी मुनि मछलियों को देखा मैथुन करते, परफेक्ट टाइमिंग सौबरी मुनि का उस समय। ययाति का उदाहरण है श्रीमद् भागवत में कि महाराज ययाति शिकार के लिए निकले हुए और उनको प्यास लगी तो उन्होंने कुआं देखा और उन्होंने कुएं के अंदर देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री गिरी हुई है, देवयानी, और उसे हाथ देकर बाहर निकाला। आगे चलकर हुआ क्या, फिल्मों में दिखाते ना, लव एट फर्स्ट साइट, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, फिर शादी हो गई। तो एक बार महाराज राधानाथ महाराज अपने लेक्चर में कह रहे थे कि देखो क्या परफेक्ट टाइमिंग था कि वो देवयानी का उस कुएं में गिरना, ययाति महाराज का उसी समय उसको प्यास लगना, हा? और वो कुएं की ओर जाना और फिर खुद भी कुएं में गिरना। इंद्र और बृहस्पति, इंद्र की पूजा चल रही है स्वर्ग लोक में, इंद्र की आरती उतार रहे हैं सब लोग, और उसी समय बृहस्पति कुछ एक क्षण के लिए पहुंचे। अभी वो भी सोच रहे थे कि गुरु महाराज आप थोड़ा लेट नहीं आ सकते थे, खत्म हो जाता फिर अच्छे से। वो एक क्षण के लिए उठे नहीं अपने गुरु महाराज का सत्कार करने के लिए, श्राप, और पूरा उनका जो स्वर्ग लोक है, सारे देवतागण, सारे उसके लिए उनका उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो ये सब कुछ उनको देखना पड़ा वो एक क्षण की गलती की वजह से। तो यहां पर हम ये मुद्दा प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें संकेत देते हैं उनकी भक्ति का बहुत परफेक्ट टाइमिंग के द्वारा, वैसे ही माया देवी वो वार्निंग्स देती हैं हमें उनके भी परफेक्ट टाइमिंग के अनुसार। हमको गुरु साधु शास्त्र के अनुसार उनका टाइमिंग जान लेना है और ये किसके तरफ से आ रहा है वो भी पहचान लेना है। सब कुछ दिया गया है हमारे गुरु साधु शास्त्र में। और लेसन नंबर 4 जिसकी चर्चा हम अब करेंगे हमारे अगले बुधवार के कार्यक्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि इस प्रसंग की जो अगली घटना हुई कि जब ग्वाल सखागण रिजेक्ट हुए और रिजेक्ट होते हुए ग्वाल सखा अब वापस लौटे हैं, मायूस लौटे हैं भगवान की ओर कि भगवान आपने भेजा था और वहां पर तो पूरा फेलियर हुआ है, रिजेक्शन हो गया हमारा। तो भगवान ग्वाल सखाओं को ये कहते हैं कि चाहे तुम मेरे शुद्ध प्रतिनिधि क्यों ना हो, इवन इफ यू आर अ प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, Be ready to be rejected। और हम इस प्रीचिंग में क्या क्या हमारे शुद्ध भक्त गुजरते हैं, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सिटिंग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की। एक हमारे कृष्ण धन प्रभु और